ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने आर्थिक वर्ष 2075-76 का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष किया पेश। भ्रष्टाचार नियंत्रण को प्रभावकारी बनाने के लिए संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग को अख्तियार मातहत लाने का दिया सुझाव। उच्च शिक्षा को पूर्ण रूप से निःशुल्क नहीं बनाया जा सकता है, शिक्षा मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल ने किया स्पष्ट। और पाकिस्तान की उच्च अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति के मृत्युदंड के फैसले को किया रद्द। अब समाचार विस्तार से। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में एक कार्यक्रम के दौरान आयोग के प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिबरे ने आर्थिक वर्ष 2075-76 का प्रतिवेदन पेश किया और आयोग के कार्य संपादन के बारे में बताया। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने कहा कि पिछले वार्षिक वर्ष में आयोग ने 64% शिकायतों का निराकरण किया। आज वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में जानकारी साझा करने के लिए आयोग के बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि आर्थिक वर्ष 2075-76 में दर्ज हुई 24,085 शिकायतों में से 15,527 शिकायतों का निराकरण किया गया। प्रवक्ता कोइराला के मुताबिक स्थानीय तह संबंधी शिकायतों की संख्या अधिक थी और प्रादेशिक रूप में सभी प्रदेशों में से प्रदेश नंबर 2 से जुड़ी शिकायतों की संख्या ज्यादा थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग को आयोग के मातहत रखने का सुझाव प्रतिवेदन में दिया गया है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल ने कहा कि उच्च शिक्षा को पूरी तरह निःशुल्क नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति की शिक्षा संबंधी कुछ नेपाल आइनों के संशोधन के लिए बने विधेयक 2075 पर विचार विमर्श के लिए आज सिंहदरबार में बुलाई गई बैठक में मंत्री पोखरेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दलित, विकलांग और विपन्न लगायत को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान संविधान में ही मौजूद है, मगर के अलावा अन्य के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा मुहैया कराना फिलहाल संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति ने उसके निर्देशों का क्रियान्वयन न करने वाले मंत्रालयों से इसका जवाब मांगने का फैसला लिया है। समिति की आज की बैठक ने बाजार अनुगमन के बाद दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन न होने के संबंध में संबंधित मंत्रियों से जवाब मांगने का निर्णय किया। मकवानपुर की मनहरी गांवपालिका को नेपाल की पहली बाल मैत्री स्थानीय शासन युक्त गांवपालिका घोषित किया गया है। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने आज मनहरी गांवपालिका को बाल मैत्री शासन युक्त गांवपालिका घोषित किया। अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा ने कहा कि देश के विकास और समृद्धि के लिए उद्योग क्षेत्रों में भी समावेशी निवेश की जरूरत है। समृद्धि फाउंडेशन द्वारा आज काठमांडू में आयोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था और लैंगिक मैत्री निवेश विषय कार्यक्रम में उन्होंने घरेलू व छोटे उद्योग में निवेश बढ़ाने का बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को सुझाव दिया। अर्थमंत्री डॉ खतिवाड़ा ने कहा कि समावेशी विकास के लिए सभी वर्ग और समुदाय के साथ सरकार, निजी क्षेत्र और सहकारियों को संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने आज शहरी विकास मंत्रालय में जाकर पदभार ग्रहण किया। मंत्रालय में पदभार ग्रहण करते हुए मंत्री बासकोटा ने कहा कि विकास लागत कम करने के लिए एकीकृत बस्ती निर्माण पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्यस्तता के कारण अपने अभिभावकों को समय न दे पाने वाले बच्चों के लिए आवश्यक मापदंड बनाकर पार्क की स्थापना की जाएगी। अवैध बालू और गिट्टी उत्खनन का विरोध करने के कारण हत्या के शिकार हुए धनुषा जिला की मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 5 श्रीपुर के 24 वर्षीय दिलीप महतो के परिवार को आर्थिक सहायता स्वरूप 5,00,000 रूपये देने का प्रदेश नंबर 2 सरकार ने निर्णय किया है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार धनुषा की मिथिला नगरपालिका 5 स्थित औरही नदी में बालू और गिट्टी उत्खनन का विरोध करने वाले महतो का टिपर से टक्कर देकर हत्या की गई थी। हत्या के आरोप में क्रशर उद्योग के संचालक सहित टिपर, लोडर और महतो को घर से बालू वाले व्यक्ति कर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस सार्वजनिक कर चुकी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि प्राप्त उपलब्धियों और क्रांति को निरंतरता देने के लिए ही दोनों पार्टियों का एकीकरण हुआ है और इसलिए इन भावनाओं को समझना जरूरी है। तन्हुई की दनौली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रवक्ता श्रेष्ठ ने कहा कि राजनैतिक परिवर्तन और उपलब्धियों का प्रयोग करते हुए समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। माध्यमिक तह से उच्च शिक्षा तक की पाठ्यक्रमों में योग शिक्षा को जीवन के दर्शन के रूप में अब आगे बढ़ाया जाएगा। नेपाल को योग भूमि के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक परिचय दिलाने के लक्ष्य के साथ सरकार कक्षा 9 से 12 तक ऐच्छिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम तैयार करेगा। आने वाले माघ 2 गत्ते 22वां भूकंप सुरक्षा दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया जाएगा। इस बात की जानकारी भूकंप सुरक्षा दिवस प्रचार उपसमिति ने दी। विक्रम संवत 2019 साल माघ 2 गत्ते के दिन आए भूकंप के याद में हरेक साल ये दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह केस में मौत की सजा सुनाने वाले विशेष अदालत को गैरकानूनी करार दे दिया है। कोर्ट की फुल बेंच ने यह फैसला आज जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की याचिका पर सुनाया। उन्होंने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। पत्रकार अब्दुल हक के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में विशेष अदालत की तमाम कार्रवाई को भी रद्द कर दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक ए खान के मुताबिक इस फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ की सजा भी खत्म हो गई है। 17 दिसंबर को इस विशेष अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी ठहराते हुए उन्हें पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विशेष अदालत ने कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं किया था और न ही उनके खिलाफ मामले को दर्ज करने के लिए किसी अथॉरिटी की अनुमति ली थी। कोर्ट ने कहा कि 18वें संशोधन के तहत संविधान के आर्टिकल 6 में जो बदलाव किया गया उसके तहत यह फैसला नहीं दिया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी अभियुक्त की गैर मौजूदगी में उसका ट्रायल करना गैर इस्लामी, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के नेतृत्व में लाहौर हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच में जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद जहांगीर शामिल थे। इस फुल बेंच का गठन पिछले माह रिटायर हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरदार शमीम अहमद खान ने किया था। लाहौर हाईकोर्ट इस पर अपना विस्तार से फैसला बाद में जारी करेगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.7 और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने आर्थिक वर्ष 2075-76 का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष किया पेश। भ्रष्टाचार नियंत्रण को प्रभावकारी बनाने के लिए संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग को अख्तियार मातहत लाने का दिया सुझाव। उच्च शिक्षा को पूर्ण रूप से निःशुल्क नहीं बनाया जा सकता है, शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने किया स्पष्ट। और पाकिस्तान की उच्च अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति के मृत्युदंड के फैसले को किया रद्द। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।